کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک و بابرکت نام کے ساتھ السلام علیکم عزیز دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ جی بالکل، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں، اور اپنے تمام کام کر کر، ٹھیک ہے، تمام کام نمٹا کر وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، اور آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہیں نا، شاباش، اچھی بات ہے۔ اور اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرا کون ساتھ دیتا ہے؟ کون ساتھ دیتا ہے؟ بالکل غلغلی پروگرام میں میرا ساتھ دیتے ہیں، اور غلغلی فون پر بات کر رہے ہیں اور فی الحال تو مصروف ہیں اور اداس بھی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پھر سے غلغلی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ غلغلی، غلغلی کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تم اتنا اداس کیوں ہو بھائی، بتاؤ ہمیں۔ تمہارا دوست آج جا رہے؟ کہاں جا رہے؟ ملک سے باہر، کسی اور ملک جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے؟ یہ تو خیر اداس کر دینے والی بات ہے جب انسان کا ایک دوست اس سے دور ہو جاتا ہے اور چلا جاتا ہے ملک سے باہر ہمیشہ کے لیے۔ غلغلی فی الحال اداس ہے، آئیے ساتھ مل کر غلغلی کا دھیان بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غلغلی، ہاں مجھے دیکھو، ایک بات بتاؤ، تمہارا دل چاہتا ہے کہ تم کسی دوسرے ملک جاؤ یا نہیں؟ تمہارا دل چاہتا ہے؟ نہیں، نہیں چاہتا۔ اچھا، تمہارے امی، تمہارے ابو، ان کا دل چاہتا ہے وہ کسی اور ملک جائیں؟ چاہتا ہے؟ نہیں، انہیں اپنا ملک پسند ہے۔ تو غلغلی کو جس ملک میں وہ خود رہتے ہیں، یعنی ان کا اپنا ملک، ان کا اپنا وطن زیادہ پسند ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آؤ تو اس بارے میں آج ہم بات کرتے ہیں۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں غلغلی، انسان کا وطن، انسان کا ملک اس کی پہچان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح، تو پھر جب ہماری پہچان ہمارا ملک ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے غلغلی؟ غلغلی ارے رو مت، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، اور نہیں، ارے بابا غلغلی پریشان کیوں ہو رہو، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، سنو، تم نے یہاں بٹن دبایا اور وہاں سے تمہارا دوست آن لائن ہوا، اور تم دونوں دوسرے کو دیکھ سکتے ہو، بات چیت کر سکتے ہو، چیٹ کر سکتے ہو، خیر بہت ساری، تمہارا دوست جس ملک وہ گیا ہے وہاں کی تصویریں تمہیں بھیجے گا، ٹھیک ہے، تم وہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کی چیزیں، ٹھیک ہے، اور تم جس ملک میں رہتے ہو، اپنے ملک پر رہتے ہو، جس ملک پر تمہیں فخر ہے، ٹھیک ہے، تم اس ملک کے بارے میں اسے بتا سکتے ہو، تمہارے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، تمہارے وطن میں کون کون سی نئی نئی چیزیں ہو رہی ہیں، اور کس طرح سے تمہارا وطن ترقی کر رہا ہے، تم اسے بتا سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، انسان کا ملک جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسے سب چیزوں سے زیادہ وہ پیارا ہوتا ہے، اس کا وطن اسے سب چیزوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ کیوں؟ جس طرح میں نے کہا، انسان کا وطن اور اس کا ملک اس کی پہچان ہوتا ہے۔ اگر کوئی دشمن آتا ہے گن لے کر، ٹھیک ہے، اور ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ ہمارا، اس ملک کے باشندوں کا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک سے وہ حفاظت کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسری بات، یہ ہمارا فرض ہے کہ اپنے ملک کے بارے میں ہم اپنی معلومات کو مکمل رکھیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح ہمیں سب کچھ اپنے ملک کے بارے میں پتا ہو، ہماری ثقافت کے بارے میں، اور مثال کے طور پر ہمارے ملک میں ایسی کون کون سی جگہیں ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جو دیکھنے کے لائق ہیں، اور دوسروں کو بتا کے ہم انہیں یہاں پر دعوت دے سکیں، اور مثال کے طور پر اپنی تہذیب کے بارے میں، ہر ایک ملک کا، ٹھیک ہے، ایک خاص قسم کا، مثال، ایک خاص ثقافت ہے، خاص تہذیب ہے، خاص تمدن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کے بارے میں معلومات ہمیں مکمل کرنی چاہیے۔ یہاں پر غلغلی کے اداسی کو ہم دور بھگاتے ہیں، آپ دیکھیں ایک حصہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، بالکل وہ جہاز جائے گا تو ہم اسے بابائی کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایئرپورٹ پہ جا کے، ایئرپورٹ کے پاس جا کے بابائی کریں گے۔
رحمان رحیم، السلام علیکم پیارے پیارے بچوں۔ بچوں آج ہم آپ کے لیے ایک بار پھر ایک بہت ہی اچھا قصہ لے کر آئے ہیں۔ یہ قصہ ہے ہمارے آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق۔ ہوتا یہ ہے کہ اس وقت بارش جو ہے وہ بالکل بھی نہیں برس رہی ہوتی، پھول مرجھا گئے ہوتے ہیں، لوگ بھی مرجھا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب بارش نہیں برستی تو غلہ نہیں اگتا، اناج نہیں اگتا، اور جب زمین سے کچھ اگے گا نہیں تو لوگ کھائیں گے پئیں گے کیسے، اور جب کھائیں گے پئیں گے نہیں تو ظاہر ہے دن بدن کمزور ہو جائیں گے، لاغر ہو جائیں گے۔ تو یہی ہو رہا تھا اس زمانے میں اس جگہ کے لوگوں کے ساتھ، کہ قحط جیسا حال تھا، بہت سال ہو گئے تھے بارش نہیں ہوئی تھی، زمین خشک ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں مامون کی حکومت تھی، اب امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امام آپ تو حجت خدا ہیں، آپ خدا سے دعا کریں کہ بارش برس جائے تاکہ ہماری تمام جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ امام جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں کھلے میدان میں اور اب تیار ہیں تمام لوگ اور امام کے بارش کے لیے دعا کریں۔ امام جو ہے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن جو ہے کوئی بھی بادل نہیں آتے۔ اب مامون جو ہے وہ یہ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اچھا ہے کوئی بھی بادل ہی نہیں آئے، بارش ہی نہیں برسے تاکہ لوگوں کا جو اعتقاد ہے امام کے اوپر، لوگوں کی جو محبت ہے امام سے وہ کم ہو جائے۔ لیکن ظاہر پروردگار تو یہ نہیں چاہتا تھا۔ امام نے جو ہے وہ دعا کے لیے اپنے ہاتھ پھر سے اٹھائے اور اب دیکھا ایک دفعہ بادل آتے ہیں لیکن برسے بغیر چلے جاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں لوگوں سے کہ بھئی یہ ہمارے بادل نہیں ہیں، ہمارے بادل ابھی آئے نہیں ہیں۔ غرض کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ بادل آتے ہیں اور زور سے بارش شروع ہوتی ہے اور پروردگار اپنی حجت کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ مامون یہ دیکھ کر بہت غمزدہ اور غمگین ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر اس کا منصوبہ تو خاک میں مل جاتا ہے۔ اس کا تو منصوبہ یہ تھا نا کہ بارش نہ برسے تاکہ لوگوں کی امام سے محبت کم ہو جائے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ بارش برس رہی ہے اور لوگوں کی عقیدت میں، لوگوں کی محبت میں اضافہ ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ امام کے آمد سے بہت زیادہ خوش ہیں، تو ظاہر ہے وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ تو بچوں آٹھویں امام، امام علی رضا علیہ السلام کی بے شمار کرامات سے، یہ کرامات میں سے یہ ایک ایسا معجزہ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا۔ امید ہے آپ اس کو اپنے ذہن کے گوشوں میں محفوظ رکھیں گے اور اپنے دوسرے دوستوں کو بھی ضرور بتائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
کہتی ہوں، اور یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے وطن کے حوالے سے، ہمارے ملک کے حوالے سے، جی ہاں جس پر ہم فخر کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے ملک کی ہم خدمت کریں، ٹھیک ہے نا؟ خدمت کرنے کے کچھ مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بہت ہی مثال کے طور پر اپنے معاشرے میں ایک اہم کردار نبھا کر اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ آپ اگر آپ کے ملک میں کوئی جنگ وغیرہ، خدا نخواستہ ایسا کوئی مسئلہ ہے، تو اس میں جا کے آگے حصہ لے کر، مثال کے طور پر حفاظت کے لیے حصہ لے کر، آپ اپنے ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو آپ؟ مجھے انجیکشن مت لگانا، مجھے ڈر لگتا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ٹھیک، کیا لائے ہو انجیکشن، کیوں لائے ہو تم یہاں پر؟ او اچھا، آج پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے ڈاکٹر غلغلی جو یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر غلغلی آپ ٹھیک ہیں؟ انجیکشن لے کر اپنے ساتھ آئے ہیں اور بالکل یہاں پر جس طرح غلغلی کیا کر رہے ہو؟ او انجیکشن لگانے کی، ایسے لگاؤ گے انجیکشن تو بیچارہ مریض بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ویسے ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا یہاں پر غلغلی نے ہمیں دیا۔ دیکھیے، ڈاکٹر بن کر بھی آپ ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، ہمیں جس طرح بتایا کہ کچھ مختلف طریقے ہیں ملک کی خدمت کرنے کا۔ اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، جس طرح غلغلی یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور اپنی ملک کی خدمت کروں گا، دیکھیے اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ اس ملک کے باشندوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ ان کا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں پھر سے صحت یاب کرتے ہیں۔ تو کیا اگر ایک ملک में, एक शहर में, एक इलाके में, एक मोहल्ले में, पूरी मैं बात करी उस हवाले से, उसके बाशिंदे, वहां पर रहने वाले लोग सेहतमंद होंगे तो क्या वो अच्छी तरह काम कर सकेंगे, अच्छी तरह काम कर सकेंगे तो इसका असर पड़ेगा कहाँ पर, जी हाँ मुल्क के इक्तिसाद पर, ठीक है। और इसी तरह आपका मुल्क तरक्की 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 करेगा, ठीक है ना। मुझे डर लगता है इसे हटाओ हटाओ गल के लिए। ओहो खैर, तो यहाँ पर आप ही काम कर सकते हैं, आप भी पढ़ लिख कर, ठीक है, और एक अच्छी जॉब पाकर, एक अच्छा काम कर, एक मुस्बत काम कर आप भी अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग इंजीनियर बनते हैं, और जब वो इंजीनियर बनते हैं तो वो मुल्क की खिदमत करते हैं। बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वो पढ़ लिख कर बच्चों को जाके पढ़ा सकें, उस्ताद या टीचर बन सकें, तो एक तरह से वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। किस तरह से जनाब, जनाब वो जाते हैं स्कूल में, टाइम लगाते हैं, अपना टाइम रखते हैं बच्चों के लिए और उन्हें पढ़ाते हैं, ठीक है, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि आगे चल कर वो माशरे में अहम किरदार निभा सकें, ठीक है। अगर आपका सेहतमंद होगा अब जिस्मानी लिहाज से और नफ्सियाती लिहाज से, तो आप ये बात जो है अपने जहन में बिठा लीजिए और मेरी बात का आप यकीन कीजिए कि आपका मुल्क जो है वो सेहतमंद भी होगा, दोनों लिहाज से, जैसा मैंने कहा जिस्मानी लिहाज से और आपकी नफ्सियात, और फिर आपका मुल्क तरक्की करता रहेगा। अब ये गन बन गया, ये गन बन गया, खैर तो ठीक है ना। और छोटे बच्चों जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप ही मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। किस तरह, बिल्कुल दिल लगाकर पढ़कर, ठीक है ना। जब अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आप मुल्क की खिदमत करेंगे। अरे देखें हिस्सा अभी, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हमें साथ मिलकर देखना चाहिए एक हिस्सा, लेकिन इस हिस्से के बाद इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपने बिल्कुल टीवी के सामने से हिलना नहीं है, ठीक है। रहती है कि वो अपने वतन के लिए कुछ ना कुछ कर सके, अपने मुल्क की खिदमत कर सके, अपने मुल्क में कोई ऐसा काम कर सके कि उसके मुल्क का, उसके वतन का नाम पूरी दुनिया में, जी हाँ पूरी दुनिया में रोशन हो, ठीक है ना। हम सब की भी यही कोशिश रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे मुल्क का नाम सबकी जुबानों पे हो, ठीक है ना। और ओ, जी अब यहाँ मेरे साथ कौन है आप जनाब, आप कौन हैं? ओ हमारे साथ हैं कौन, उधर कमांडर गलगली साहब यहाँ पर मौजूद हैं। और गलगली ये तुम क्या कर रहे हो, हाथ में बंदूक लिए तुम यहाँ पर? ओ जनाब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं फौज में भर्ती होना चाहता हूँ और सिपाही बनना चाहता हूँ, और आप तो जानते होंगे फौज मुल्क की हिफाजत में एक बहुत ही नुमायां और अहम किरदार अदा करती है। फौज में जो सिपाही होते हैं वो दिन रात जाग कर हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, ताकि हम जैसे अफराद, जी हाँ, रात को आराम से चैन की नींद सो सकें। फौज जी, ओ, क्या हुआ, मैंने क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं 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 मैंने कुछ नहीं किया, मैं आप ही हूँ, बच्चों के लिए प्रोग्राम पेश कर रही हूँ, ठीक है ना? ओके ठीक। तो मैं यही कह रही थी, यहाँ पर सिपाही गलगली को थोड़ा सा मुझ पर शक हुआ और उन्होंने फौरन कहा भाई हैंड्स अप, और आप क्या कर रही हैं। खैर आपको बताती हूँ, फौज में जो लोग होते हैं, जो सिपाही होते हैं, जो फौजी होते हैं, ठीक है, वो दिन रात ठीक है जागते हैं, मुल्क की सरहदों पर सख्त यहाँ पर वहाँ पर कड़ी निगरानी वहाँ पर देते हैं, या खड़े होकर वहाँ पर मिसाल के तौर पर उनको ये रहता है कि भाई ऐसा ना हो कि सरहद से पार एक दुश्मन हमारे मुल्क में आ जाए, ठीक है, और हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाए। और वहाँ पर वो खड़े रहते हैं और बिल्कुल वहाँ पर हिफाजत देते हैं, वहाँ हिफाजत करते हैं हमारे मुल्क की, और उनको बस इस बात की फिक्र रहती है कि भाई कोई हमारे मुल्क को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है ना। फौज में भर्ती होना, फौज में जाना, सिपाही बनना, जी हाँ ये एक और तरीका है जिससे अपनी मुल्क की आप खिदमत कर सकते हैं, जी हाँ जिससे अपने मुल्क की आप हिफाजत कर सकते हैं, ठीक है। फौजी हजरात बहुत 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 ही अच्छे इंसान होते हैं, ठीक है। आपके जहन में कभी ये बात ना आए कि हाँ भाई वो लोग सिर्फ जंग वगैरह के लिए होते हैं। क्या हुआ? ओ क्या हुआ? गलगली मैं समझी कि तुम इस तरह कह रहे हो कोई जेट आ गया हम पर हमला करने के लिए। अरे पापा क्या हो गया तुम्हें, तुम फौज में जाके ये करने वाले हो? बल्कि नहीं, तुम्हें बहुत ही संजीदगी से इस मामले के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है ना। हम मुख्तलिफ काम कर मुख्तलिफ कदम उठा कर, अब चाहे वो कदम छोटा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो काम शायद हमारे हद तक ही क्यों ना हो, वो काम कर ठीक है अपने मुल्क का हम नाम रोशन कर सकते हैं। हम देखते हैं कि ठीक है फौजी हजरात अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, ठीक है, शहीद होते हैं, ठीक है, जंग में जाते हैं और बिल्कुल बहुत 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 ठीक है दिल लगाकर, बहुत ही बहादुरी से जाकर लड़कर दुश्मन को नाकाम कर ठीक है अपने मुल्क को सरबुलंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये होता है कि भाई ये हमारा मुल्क है, पहले हमारा मुल्क फिर हम, ठीक है, यानी वो अपनी जानों का नजराना देते हुए भी नहीं कतराते। उनको इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि हाँ भाई वो आके हमें मार देगा। वो हम बहुत बहादुर लोग होते हैं, बहुत ही बहादुरी से जाकर लड़ते हैं और बिल्कुल हमारी हिफाजत करते हैं, ठीक है ना, यानी हमारे मुल्क की जब वो हिफाजत कर रहे हैं, वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं, तो दरअसल उसमें रहने वाले बाशिंदों की वो हिफाजत कर रहे हैं। तो ठीक, हम जब जहाँ कोई फौजी देखेंगे तो हम उसे यूँ सल्यूट मारेंगे और कहेंगे कि भाई आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि आप हमारा और हमारे वतन और हमारे मुल्क का इतना ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। और एक बहुत ही अच्छा आइडिया है भाई गलगली साहब कि तुम जाके फौज में भर्ती हो जाओ, लेकिन उम्मीद करते हैं कि फौज में भर्ती होने के बाद ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, देखें एक हिस्सा। तो देखते हैं एक हिस्सा, उसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा।
अलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मज़ेदार सी चीज़ के जिसे खाना सबको बहुत पसंद है, बच्चों और बड़ों को सबको यकसा पसंद है वो चीज़, और हम हर वक्त उसे खाने के लिए तैयार रहते हैं। मीठी मीठी और मज़ेदार सी इस चीज़ का नाम है चॉकलेट। एक ऐसी मज़ेदार सी चीज़ के जिसके खाने से हमें फौरी एनर्जी मिलती है और खुशी भी।
बच्चों चॉकलेट में कैलोरीज बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और इसीलिए चॉकलेट खाते ही हमें ताकत का एहसास होता है। सुबह में अगर एक छोटी सी चॉकलेट खा ली जाए तो चाको चौबंद रहने में मदद मिलती है। वो बच्चे के जो चॉकलेट खाते हैं उनकी ज़हनी सलाहियतें बाकी बच्चों के मुकाबले में उमूमन ज़्यादा होती हैं। बेहतर तौर पर वो बच्चे पढ़ने लिखने के काम कर पाते हैं। और बच्चों चॉकलेट की एक किस्म डार्क चॉकलेट भी है, यानी जिसका रंग सियाह होता है। बच्चों अगर हमें चॉकलेट से मिलने वाले फ़वाद को हासिल करना है तो हमें डार्क चॉकलेट खानी चाहिए, क्योंकि उसके नुकसान कम हैं और फ़ायदे ज़्यादा। डार्क चॉकलेट हमें मोटा भी नहीं करती। अगर घर में किसी को दिल का कोई मसला है तो उसे मशवरा दें कि डार्क चॉकलेट खाए, क्योंकि डार्क चॉकलेट दिल की धड़कन को मामूल पर रखती है। बच्चों चॉकलेट आपकी क़ुव्वत शामा को भी कवी करती है, इस तरह आपकी सूंघने की सलाहियत बेहतर हो जाती है और आप बहुत सी चीज़ों को दूर से ही सूंघ सकते हैं। बच्चों चॉकलेट को हम वैसे भी खा सकते हैं और चॉकलेट वाला दूध भी पी सकते हैं। चॉकलेट का मीठा भी बनाया जाता है, चॉकलेट की आइसक्रीम भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन बच्चों रात में कभी भी चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्कान है कि रात में चॉकलेट खाने से आपके दांत हो जाएंगे ख़राब। चॉकलेट को कोशिश करें कि दिन में खाएं, और वो भी खाना खाने के बाद अच्छी तरह से ब्रश कर लें ताकि तमाम नुकसान पहुँचाने वाले अवामिल का खात्मा हो सके।
जी दोस्तों, और हम पहुंच गए एक बार फिर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। इस हिस्से में हम क्या करते हैं जी, हम वही करते हैं जो पहले वाले हिस्सों में कहते हैं, बातचीत करते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और यहाँ पर गलगली फिर से मसरूफ हैं। ठीक, देखते हैं क्या करें। गलगली क्या कर रहे हो? अरे ये तो हमारे मुल्क का नक्शा है। ठीक, और तुम क्या करने के? हाँ गलगली यहाँ पर अपने मुल्क के नक्शे को बगौर देख रहे हैं, मुताला कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी अहम जगहें हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दूसरों को बता सकता हूँ, उन्हें बता सकता हूँ कि भाई आइए हमारे मुल्क आकर ये चीज़ें देखिए। बिल्कुल, एक ही बहुत अच्छा तरीका है। अक्सर ये होता है, हम कहते हैं मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, ठीक है, हम कोई मिसाल के तौर पर डॉक्टर, फौजी, टीचर वगैरह बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे अहम नुक्ता ये है, आपको आपके मुल्क के बारे में पूरी मालूमात पता होनी चाहिए, ठीक है ना? सही, यहाँ पर ये शहर बहुत गर्म है, ठीक है, और वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि इस तरफ जो है काफ़ी ठंड पड़ती है। बिल्कुल ठीक ठीक, और यहाँ पर ठीक है, जंगली जानवर, जंगल, ठीक सही, यहाँ पर जंगलात हैं। बिल्कुल गलगली, बहुत अच्छी बात है। हर मुल्क में मुख्तलिफ सूबे होते हैं, मुख्तलिफ शहर होते हैं, मुख्तलिफ इलाके होते हैं, ठीक है, हर शहर हर सूबे की अपनी एक खास बात होती है। जिस तरह गलगली ने इशारा किया, शायद एक सूबा है जहाँ पर सख्त गर्मी पड़ रही है, ठीक है, एक सूबा है जहाँ पर बड़ी ठंड है, एक सूबा है जहाँ पर दरिया वगैरह और कहीं जंगलात हैं। इस हवाले से हमें अपनी मालूमात रखनी चाहिए। हर मुल्क में बहुत सी तारीखी इमारतें भी होती हैं, कुदरती मनाजर के साथ साथ तारीखी इमारतें भी होती हैं, ठीक है, हम उनके बारे में जानकर, उनके बारे में मालूमात हासिल करके मिसाल के तौर पर बहुत सी ऐसी जगहों पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपने दोस्त, जो आपके दोस्त मिसाल के तौर पर कोई ऐसा दोस्त है जो मुल्क से बाहर रहता है, उसे बता सकते हैं, उसे दावत दे सकते हैं कि आओ भाई हमारा मुल्क देखो, हमारा मुल्क एक बहुत ख़ास मुल्क है, हमारे मुल्क की तहजीब व तमद्दुन एक ख़ास तहजीब व तमद्दुन है, एक ख़ास सकाफत हमारे मुल्क में है ना, तो आपको इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऊपर की तरफ, शाबाश, जी हाँ बिल्कुल, जब आपको आपके मुल्क के बारे में मालूमात ही नहीं होंगी, हाँ ओ ट्रेन पर बैठ के जाएंगे, बिल्कुल, बहुत से ऐसे आपके शहर होते हैं जहाँ पर आपने ट्रेन में जाके जाना होता है, वहाँ पर कहीं कहीं हवाई जहाज़ वगैरह नहीं जाते, ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में आपको पूरी पूरी मालूमात रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये होगा, जब आप मालूमात रखेंगे, कोई आपसे सवाल पूछेगा भाई बताओ अपने मुल्क के बारे में हमें, तो आप बड़े फ़खर से अपने मुल्क के बारे में बताएंगे उन्हें, ठीक है, बताएंगे भाई हमारा मुल्क ऐसा है, ये है, वो है, और फ़खर से बताएंगे अपने दोस्तों को अपने मुल्क के बारे में, जब आपके पास मुकम्मल मालूमात होंगी। अभी गर्मी हो रही है यहाँ पर, ओह इसको अपने सर को नहीं, इसे हिलाओ। बिल्कुल शाबाश। तो बच्चों उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी खास मिसाल इलाके में रहते हैं, ठीक है, इलाके के बाद एक शहर, शहर के बाद एक सूबा, सूबे के बाद एक मुल्क, हमेशा याद रहे अपने मुल्क पर हमेशा फ़ख्र कीजिए, ठीक है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं फ़ख्र कीजिए उस मुल्क के ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो आपकी पहचान है, ठीक है, आपका मुल्क आपकी पहचान है, ठीक है। देखिए आपको जब कोई बुलाता है, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं भाई कहीं कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कोई ये नहीं कहेगा कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले शख्स जो हैं अली, नहीं, वो कहेंगे हिंदुस्तान में रहने वाले बाशिंदे, हम सबको, ठीक है, वो बुलाएंगे, हम सबसे मुखातब होंगे। तो फिर अपने मुल्क का ख्याल रखना है, उसकी हिफाजत करनी है, ठीक है ना, उसकी खिदमत करनी है ताकि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामजन रहे, ठीक है ना। तो फिर अपना बहुत ख्याल रखना। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, यानी जाने का वक्त आ गया है, और आपसे लेंगे इजाज़त इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।